تیسرا باب، کہے ہوئے لفظ کی تخلیقی قدرت۔ ہمیں بہت سے ایسے اقدام پر عمل درآمد کرنا ہے تاکہ ایمان کو مکمل طور پر سہ سکے، اور ہمیں ایک بنیادی سچائی سیکھنی ہے جو کہ اس میدان کے بارے میں ہے جس میں ایمان کام کرتا ہے، اور کہے ہوئے لفظ کے بارے میں ایک بنیادی اصول کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میں آپ سے کہے ہوئے لفظ کی تخلیقی قدرت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور ان وجوہات کے بارے میں بھی کہ اس کا استعمال اس قدر اہم کیوں ہے۔ ایک صبح میں کوریا کے ایک ممتاز اعصابی سرجن کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ مجھے دماغ کی کارکردگی کے بارے میں بہت سی طبی تحقیقات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، ڈاکٹر چو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دماغ میں بولنے کا مرکز تمام اعصابی نظام کو قابو میں رکھتا ہے؟ حقیقتاً تم خادموں کے پاس قوت ہے، کیونکہ نیورالوجی کی نئی تحقیقات کے مطابق دماغ میں بولنے کے مرکز کا تمام نسوں پر مکمل غلبہ ہوتا ہے۔ پھر میں یہ کہتے ہوئے ہنسا، میں یہ بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ نیورالوجی کی دنیا میں یہ نئی تحقیقات ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے یہ ڈاکٹر یعقوب سے سیکھا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ ڈاکٹر یعقوب کون ہے؟ میں نے جواب دیا، تقریباً 2000 سال پیشتر وہ بائبل کے زمانے کا ایک مشہور ڈاکٹر تھا، اور اپنی کتاب کے 3rd باب کی پہلی چند آیات میں ڈاکٹر یعقوب نے بڑی وضاحت کے ساتھ زبان اور بولنے کے مرکز کے کام اور اہمیت کے بارے میں لکھا ہے۔ اعصابی سرجن مکمل طور پر حیران ہو گیا، کیا بائبل واقعی اس کے بارے میں سکھاتی ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، زبان ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی رکن ہے، لیکن تمام جسم کو قابو میں رکھتی ہے۔ پھر یہ اعصابی سرجن اپنی تحقیقات کی تفصیل بتانے لگ پڑا۔ اس نے کہا کہ بولنے کے اعصابی مرکز کا تمام جسم پر اس قدر اختیار ہے کہ صرف بولنا ہی کسی شخص کو اس کے جسم پر اختیار دے سکتا ہے تاکہ وہ اپنی خواہش کو خوش اسلوبی سے پورا کر سکے۔ اس نے کہا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کمزور ہو جاؤں گا تو پھر فوراً ہی تمام نسیں اس پیغام کو حاصل کر لیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں، او آؤ ہم کمزور ہونے کے لیے تیاری کریں، کیونکہ ہمیں اپنی مرکزی پیغام گاہ سے یہ ہدایت ملی ہے کہ ہمیں کمزور ہو جانا چاہیے۔ پھر وہ قدرتی طور پر اپنے جسمانی رجحانات کو کمزوری کے مطابق تشکیل دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہے، ہاں مجھ میں کوئی قابلیت نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، پھر اسی لمحہ تمام نسیں یہی بات کہنا شروع کر دیتی ہیں، ہاں وہ جواب دیتی ہیں، ہم نے مرکزی اعصابی نظام سے یہ ہدایت پائی ہے کہ ہم کوئی خوبیاں نہیں رکھتی، اور وہ قابلیت کی حقدار کی نشو نما کی جدوجہد ترک کر دیتی ہیں۔ ہمیں لازمی ایک نااہل شخص کا حصہ بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، میں بہت بوڑھا ہوں، میں نہایت ہی بوڑھا ہوں، اور میں تھک چکا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر اسی لمحہ بولنے کا مرکزی حصہ نگراں حصے پر رد عمل کرتا ہے، اور اس تعلق سے ہدایات جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نسیں رد عمل کرتی ہیں، ہاں ہم بوڑھی ہیں، ہم قبر کے لیے تیار ہیں، آئیں ہم مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ بوڑھا ہے، پھر وہ شخص جلد ہی مر جائے گا۔ اس اعصابی سرجن نے اپنا بیان جاری رکھا کہ انسان کو کبھی کام سے سبکدوش نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ جب انسان سبکدوش ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ سے دہراتا رہتا ہے، میں سبکدوش ہو چکا ہوں، اور تمام نسیں رد عمل شروع کر دیتی ہیں اور کم سرگرم ہو جاتی ہیں، اور جلد موت کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ کامیاب شخصی زندگی کے لیے وہ گفتگو میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی، اور میری زندگی پر ایک نقش چھوڑا، کیونکہ میں دیکھ سکتا تھا کہ کہے ہوئے لفظ کا ایک اہم استعمال کامیاب شخصی زندگی کی تخلیق ہے۔ لوگ آسانی سے منفی طور پر بولنا اپنا لیتے ہیں، میں تو غریب ہوں، اوہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو خدا کو دینے کے لیے بھی کوئی پیسے نہیں ہیں۔ جب ایک نوکری کا اچھی اجرت کے ساتھ موقع بھی ملتا ہے تو اعصابی نظام کہتا ہے، میں امیر بننے کے قابل نہیں، کیونکہ ابھی تک مجھے اپنے اعصابی مرکز سے اس کے برخلاف ہدایت نہیں ملی ہے، مجھے غریب رہنا ہے، लिहाजा मैं ये नौकरी कबूल नहीं कर सकता, मुझ में पैसे रखने की काबिलियत नहीं। एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को खींचती हैं, और चूंकि आप इस तौर पर अमल करते हैं कि आप एक गरीब शख्स हैं तो आप गुरबत को खींचते हैं। ये खिंचाओ अगर मुस्तकिल तौर पर रहे तो आपको मुस्तकिलन गुरबत में रहने पर मजबूर करेगा। बयान जैसे बाइबल ने 2000 वर्ष कबल कहा, आज भी वैसा ही तबई साइंस ने अभी हाल ही में इस उसूल को दरियाफ्त किया। उस असाबी सर्जन ने कहा कि लोगों को अपने आप से ये कहते रहना चाहिए, मैं जवान हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं एक जवान शख्स जितना काम कर सकता हूँ, चाहे मेरी उम्र जितनी भी हो। फिर उस शख्स की नसें जिंदा हो जाएंगी और आखिरकार वो असाबी मरकज से कुवत और ताकत पाएंगी। बाइबल मुकद्दस बड़े वाजे तौर पर बयान करती है कि जो जुबान को काबू में रखता है वो तमाम जिस्म को काबू में रखता है। जो आप कहते हैं वही आप पाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आप गरीब हैं तो फिर आपका तमाम जिस्म गुरबत को अपनी तरफ खींचने के लिए ढालता है। आप गुरबत में ही इत्मीनान महसूस करते हैं और आप गरीब ही होना चाहेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते रहें कि आप काबिल अहल हैं तो फिर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिर आपके तमाम जिस्म को कामयाबी के लिए लगाम लगाई जा सकती है। आप हर मुश्किल का सामना करने के लिए और उसे फतह करने के लिए तैयार होंगे। यही वजह है कि आपको मनफी तौर पर नहीं बोलना चाहिए। कोरिया में हमारी ये आदत है कि हम बार बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनका ताल्लुक मरने से होता है। आम अल्फाज ऐसे हैं, ओह इतनी गर्मी है कि मैं मर सकता हूँ, ओह मैंने इतना ज़्यादा खा लिया है कि मैं दम घुटने के बायस मर सकता हूँ, ओह मैं इतना खुश हूँ कि मैं मर सकता हूँ, और ओह मैं मौत की हद तक खौफज़दा हूँ। कोरियन लोग बार बार ये मनफी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि कोरिया की 5000 साल तारीख में हम मुसलसल मरते रहे हैं, मुसलसल जंग में रहे हैं। मेरी पुश्त ने हमारे मुल्क में कभी मुकम्मल अमन नहीं देखा। मैं दूसरी जंग अजीम में पैदा हुआ, कोरिया की जंग के दौरान जवान हुआ, और अब मैं ऐसे मुल्क में रहता हूँ जो जंग के दहाने पर है। इससे पहले कि आप तब्दील हो सकें आपको अपनी गुफ्तगू तब्दील करनी है। अगर आप अपनी गुफ्तगू को तब्दील नहीं करेंगे तो आप अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को तब्दील शुदा देखना चाहते हैं तो आपको पहले लाजमी उन्हें सही जुबान का इस्तेमाल सिखाना होगा। अगर आप बागी और गैर जिम्मेदार नौजवानों को जिम्मेदार नौजवानों में तब्दील देखना चाहते हैं तो फिर उन्हें लाजमी ये नई जुबान सिखानी होगी। हम ये नई जुबान कहाँ से सीख सकते हैं? तमाम किताबों से आला जुबान की किताब बाइबल है। बाइबल को पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ें, बाइबल की जुबान सीखें, ईमान के लफ्ज़ बोलें। आपको अपने असाबी निज़ाम को फतामंद, पैदावारी, तामीरी और तरक्की पजीर अल्फाज के मजमूए से भरना चाहिए। इन अल्फाज को बोलें, इन्हें दोहराते रहें ताकि वो आपके तमाम जिस्म पर काबू पा लें। फिर आप फतामंद होंगे क्योंकि आप अपने माहौल और हालात का मुकम्मल तौर पर सामना करने के लिए तैयार होंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। ये कहे हुए अल्फाज को इस्तेमाल करने की सबसे पहली अहम वजह है ताकि कामयाब शख्सी जिंदगी हासिल करने के लिए कुव्वत तख्लीक की जाए। इलाही मकसद के लिए कहे हुए अल्फाज की तख्लीकी कुव्वत को इस्तेमाल करने की एक दूसरी वजह भी है। ना सिर्फ ये हमारी अपनी जिंदगियों को कामयाब बनाने में मदद देते हैं बल्कि रूहुल कुद्स को भी इससे खुदा के मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब मैं पहले पहल खिदमत में शामिल हुआ मैं अपने आप को एक कशमकश में महसूस करता था, यहाँ तक कि जब मैं अपने पैगामात देता था तो मैं अपनी रुकावटों को महसूस करता था। फिर खुदा का रूह मेरी रूह में उतर जाता और ऐसे लगता कि जैसे मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। मैं अपने जहन के पर्दे पर नासूरों को गायब होते, तपेदिक को ठीक होते और लंगड़ों को जो कि मुकम्मल तौर पर बेसाखियों के सहारे पर होते अचानक बेसाखियों को एक तरफ फेंकते और चलते हुए देखता। कोरिया अमेरिका से इस कदर फासले पर है कि मैंने इस किस्म की रिहाई और शिफा देने वाली खिदमत के बारे में बहुत कम सुना था। यहाँ तक कि जो चंद एक मिशनरी मेरे आसपास थे इस किस्म की खिदमत से ना आशना थे और इनसे बात करने के नतीजे में मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह इबलीस की कायम करदा एक रुकावट है। हर बार जब यह होता मैं कहता, ऐ रुकावट की रूह मुझसे निकल जा। मैं हुक्म देता हूं कि मुझे छोड़ दे, मुझसे निकल जा। लेकिन जितना ज्यादा मैं हुक्म देता उतना ही वाजे मैं लोगों को शिफा पाते हुए देखता। मैं इतना ज्यादा मायूस हो गया कि मैं बमुश्किल ही कलाम सुना सकता था। रोयाएं मुसलसल जाहिर होती रहीं, लिहाजा मैंने उसे दुआ और रोजे का मामला ठहराया और खुदा के जवाब का इंतजार करने लग पड़ा। फिर मैंने अपने दिल में खुदा को ये कहते हुए सुना, बेटा ये इब्लीस की तरफ से रुकावट नहीं है, ये रूहुल कुद्स की दीदनी ख्वाहिश है, ये इल्मियत का कलाम है। खुदा उन लोगों को शिफा देना चाहता है, लेकिन खुदा तुम्हारे बोलने से पहले अपनी शिफा नहीं दे सकता है। मैंने जवाब दिया, नहीं मैं ये नहीं मानता हूँ, खुदा मेरे एक लफ्ज़ कहे बगैर भी ये काम कर सकता है। बाद में मैंने बाइबल में पैदाइश की किताब के पहले बाब में देखा, ज़मीन सुनसान और वीरान थी और रूहुल कुद्स ज़मीन पर जुम्बश करती थी, उसे सेती थी, लेकिन कुछ भी वकू पजीर ना हुआ। खुदा ने फिर मुझ पर एक अहम सच्चाई जाहिर की। उसने कहा, वहाँ पर रूहुल कुद्स की हजूरी थी, रूहुल कुद्स का गहरा मसा पानियों पर सह रहा था, क्या उस वक्त कुछ हुआ? मैंने जवाब दिया, नहीं कुछ भी नहीं हुआ था। फिर खुदा ने कहा, तुम अपने चर्च में रूहुल कुद्स की हुजूरी को महसूस कर सकते हो, रूहुल कुद्स की धड़कती हुई और सराहियत करती हुई हुजूरी को, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, कोई रूह नजात नहीं पाएगी, किसी बिखरे हुए घर का मिलाप नहीं होगा जब तक कि तुम कलाम ना करोगे। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए सिर्फ इल्तजा मत करो बल्कि कलाम करो। मुझे वो अशिया दो जिससे मैं मौजजाती कामों को कर सकूं, जैसा कि मैंने दुनिया की तख्लीक के वक्त किया, तुम भी वैसे ही कहो। कहो रोशनी हो जा, या कहो पानी के दरमियान फिजा हो। मेरी जिंदगी में तब्दीली का बायस इस हकीकत को जानना था। फिर मैंने खुदा से माफी मांगी, खुदावंद मैं शर्मिंदा हूं, अब मैं कलाम किया करूंगा। लेकिन अभी भी मैं खौफ जदा था क्योंकि किसी ने भी मुझे इन खतूत पर नहीं सिखाया था। मैं इसलिए भी खौफजदा था कि अगर मैं कलाम कहूँ और कुछ भी ना हुआ तो फिर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लिहाजा मैंने खुदा से कहा, क्योंकि मैं खौफजदा हूँ इसलिए मैं इन लंगड़ों के बारे में जिन्हें शिफा याब देखता हूँ नहीं बोलूँगा, या मैं कैंसर की गायबशुदा रसोलियों के बारे में भी कुछ ना कहूँगा। मैं सरदर्द से शुरू करूँगा। इसके बाद जब मैं कलाम सुनाता था शिफा की रोयाएं मेरी रूह से उभरना शुरू कर देती थी, लेकिन जब मैं अपने जहन की आंख में लंगड़ों को शिफा पाते या रसोलियों को गायब होते देखता तो मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देता और मैं ये कहता, यहाँ पर कोई शख्स सर दर्द से शिफा पा गया है, और उसी लम्हा वो शख्स शिफायाब हो जाता था। मैं हैरान था कि शिफाएँ सिर्फ मेरे कहने ही से वकू पजीर हो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे और तकवीत मिली। मैंने साइनोसिस के बारे में, जो कि शिफा पा चुकी थी, बोलना शुरू कर दिया। फिर बहरों की शिफा के लिए, और आखिरकार मैं उन तमाम शिफाओं के बारे में बोला जिन्हें मैं अपने जहन की तस्वीर में देखता था। अब मेरी कलीसिया में इतवार की सुबह सैकड़ों लोग इस जरिए से शिफा पाते हैं। चूँकि वक्त बहुत कम होता है, बहुत सी इबादत करनी होती हैं, मुझे जल्दी काम करना पड़ता है, लिहाजा जब मैं खड़ा ही होता हूँ खुदावंद मुझे वो शिफाएं दिखाता है जो कि वकू पजीर हो रही होती हैं, और मैं उन्हें पुकारता हूँ। मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करता हूँ इस हकीकत के इकरार में कि वो शिफा पा चुके हैं। लोग खड़े हो जाते हैं, वो खड़े होते हैं जब किसी मखसूस बीमारी या तकलीफ जिनसे उन्हें शिफा मिल चुकी होती है पुकारी जाती है। इबादत के इस हिस्से के दौरान बहुत से लोग तमाम ऑडिटोरियम में अपनी शिफा का इकरार करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यूं मैंने एक राज को जाना, आपके लफ्ज़ कहने से पहले रूहुल कुद्स के पास मुनासिब साजो सामान नहीं होता जिसे वो तख्लीक करे। अगर रूहुल कुद्स आपके दिल में ये ईमान दे कि पहाड़ को हटा दें तो पहाड़ के हट जाने के लिए आप दुआ और इल्तजा ना करें बल्कि कहें, दूर किसी समुंदर में जा गया, और ऐसा ही होगा। अगर आप ये सीख लें और रूहुल कुद्स के मसा में और इस ईमान में जो खुदा आपको देता है बोलने की आदत बना लें, फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत से मौजजात को होता हुआ देखेंगे। 40,000 बाकायदगी से आने वाले अराकीन में खिदमत करना कोई आसान काम नहीं। हमने अपने चर्च में 24 घंटे की टेलीफोन सर्विस शुरू कर रखी है। टेलीफोन सुनने और हदायत लेने के लिए 24 घंटे मददगार वहां पर मौजूद रहते हैं। मैं अपने घर के फ़ोन नंबर को गैर रजिस्टर्ड रखने की कोशिश करता हूं, और वो गैर रजिस्टर्ड नंबर जल्द ही मालूम हो जाता है, और मुझे हर शाम से लेकर अगली सुबह तक फ़ोन कॉल मौसूल होती रहती हैं। बहुत सी रातों को जब मैं बड़े आराम से अपने बिस्तर में होता हूँ, फिर 10 बजे एक टेलीफोन आता है, पास्टर साहब मेरे पोते को बहुत तेज़ बुखार है, मेहरबानी से उसके लिए दुआ करें। लिहाजा मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। 11 बजे एक और टेलीफोन आता है, मेरा शोहर अपने कारोबार से अभी तक अपने घर नहीं आया, मेहरबानी से दुआ करें, और मैं दुआ करता हूँ। फिर रात के 12 बजे फ़ोन की घंटी बजती है, एक रोती हुई बीवी कहती है मेरा शोहर घर आया और उसने मुझे मारा, ओह ये बहुत दर्दनाक बात है, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, फिर मैं उसे तसल्ली दूंगा। 1 बजे मुझे एक शराबी शख्स का ये कहते हुए फ़ोन मौसूल होता है, मेरी बीवी आपके चर्च में जाती है, आप क्यों उसे इस तरह का रवैया रखने को कहते हैं, फिर मैं उसे तमाम वजाहत दूंगा। सुबह के वसत में एक हस्पताल से टेलीफोन मौसूल होता है, पास्टर साहब फलां फलां शख्स मर रहा है, क्या आप जल्दी आ जाएंगे, उसके मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश है कि आपको देखे, और मैं जल्दी से अस्पताल जाने के मंसूबे बनाता हूँ। टेलीफोन इस कदर बजता रहता है कि बाज़ औक़ात मैं उसकी तार निकाल देता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इस तरह ज़िंदा नहीं रह सकता, और मैं बिस्तर पर चला जाता हूँ। लेकिन फिर रूहुल कुद्स मेरे दिल में कहता है क्या तुम एक अच्छे चरवाहे हो, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी मुसीबत में नहीं छोड़ता, लिहाजा मैं उठता हूँ और तार दोबारा लगा देता हूँ। जब मैं अपने मुल्क से बाहर होता हूँ तो मुझे एक फ़ायदा होता है, ये कि मैं आखिरकार रात भर अच्छी तरह से सो सकता हूँ। मौसम सरमा की एक बहुत सर्द शाम के दौरान, जबकि मैं अपने बिस्तर पर बहुत अच्छा और आराम महसूस कर रहा था और सोने ही वाला था, एक टेलीफोन मौसूल हुआ। ये शख्स जिसे मैं मिल चुका था कह रहा था पास्टर साहब क्या आप मुझे जानते हैं, यकीनन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का निकाह पढ़ा था, मैंने 2 साल तक तमाम कुव्वत से कोशिश की थी लेकिन हमारी शादी सही तौर पर काम नहीं कर रही है। उसने कहा आज रात हमारा एक बड़ा झगड़ा हुआ है और हमने जुदा होने का फैसला कर लिया है, हमने पहले ही से अपनी जायदाद बांट ली है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, आपकी तरफ से एक बरकत, हमारी शादी आपकी बरकत से हुई थी और हम आप ही की बरकत से तलाक लेना चाहते हैं। एक खादिम के लिए ऐसी सूरत हाल से दोचार होना कितनी अजीब बात है, उनके मिलने पर बरकत देना और उनके जुदा होने पर भी बरकत देना, क्या तुम कल तक इंतज़ार नहीं कर सकते, मैं बिस्तर में हूँ, क्या मुझे अभी आना है, उसने जवाब दिया पास्टर साहब कल तक बहुत देर हो चुकी होगी, हम आज ही एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप हमें तालीम दें, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, अब हम बहुत दूर निकल चुके हैं, अब हम पहुंच से बाहर निकल चुके हैं, आप आएं और हमें बरकत दें ताकि हम तलाक याफ्ता हो सकें। मैं अपने बिस्तर से बाहर निकला, बैठक में गया, मैं अपने दिल में इबलीस के खिलाफ बहुत गुस्से में था, मैंने सोचा ये रूहुल कुद्स का काम नहीं है, ये इबलीस का काम है। जैसे ही मैंने ये दुआ शुरू की मैं फौरन चौथे रुख में चला गया, जैसा कि ख्वाब और रोयाएँ रूहुल कुद्स की ज़ुबान है, और चौथे रुख के वसीले से मैं तीसरे रुख को सह सकता हूँ और दुरुस्त कर सकता हूँ। मैंने घुटने टेके, अपनी आंखें बंद की और मसीह खुदावंद की सलीब के ज़रिए और रूहुल कुद्स की मदद के वसीले से दोबारा इस ख़ानदान को मिलते हुए देखना शुरू कर दिया। मैंने एक वाज़े रोया देखी और दुआ की, ऐ खुदा इसे ऐसे ही कर। दुआ के दौरान मैं ईमान से भर गया और मसीह खुदावंद के नाम में इस सूरत हाल को चौथे रुख में तब्दील कर दिया। चौथा रुख अपनी तमाम कुदरत से मेरा था, लिहाजा मैं इस जोड़े के अपार्टमेंट में गया। वो एक नहायत आरामदेह अपार्टमेंट में रहते थे, इस अपार्टमेंट में हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुआ मुझे एक सर्द फिजा महसूस हुई, जो कि वो नफरत थी जो इस शख्स और उसकी बीवी के दरमियान थी। آپ اس دنیا کی تمام مادی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خاندان میں نفرت ہے تو پھر وہ مادی اشیاء ہرگز کوئی نعمت نہ ہوں گی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، میں نے آدمی کو بیٹھک میں بیٹھے ہوئے پایا اور بیوی کو سونے والے کمرے میں پایا۔ جیسے ہی میں بیٹھک میں داخل ہوا، آدمی نے اپنی بیوی کے خلاف بتانا شروع کر دیا۔ پھر اس کی بیوی یہ کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، اس کی بات نہ سنو، میری بات سنو۔ پھر اس نے بھی اپنے شوہر کے خلاف کہنا شروع کر دیا۔ میں شوہر کی بات سنتا اور جو کچھ بھی وہ کہتا درست معلوم ہوتا تھا۔ پھر میں بیوی کی بات سنتا اور جو کچھ بھی وہ کہتی درست معلوم ہوتا۔ ہر کوئی اپنی رائے میں درست تھا، دونوں درست تھے، اور میں دونوں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ دونوں نے کہا کہ ان کی شادی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، ہمارے لیے دعا نہ کریں۔ وہ بار بار دہراتے رہے، صرف ہمارے طلاق کے لیے دعا کریں۔ لیکن میں قبل از بیشتر ہی اس تیسرے رخ کے فیصلے کو اپنے دل کا چوتھا رخ استعمال کرنے سے رد کر چکا تھا۔ یقین دہانی کے ساتھ میں نے شوہر اور بیوی کا ہاتھ تھاما اور میں نے کہا، مسیح خداوند کے نام میں میں ابلیس کو حکم دیتا ہوں کہ وہ نفرت کی اپنی گرفت کو اس جوڑے پر سے ڈھیلا کرے، اور اس لمحے میں مسیح خداوند کے القادر نام میں حکم دیتا ہوں کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، انہیں نرم کر اور دوبارہ ملا دیں۔ اچانک میں نے ایک گرم قطرہ اپنے ہاتھ پر گرا ہوا محسوس کیا، اور جب میں نے آدمی کی طرف دیکھا تو وہ رو رہا تھا اور اس کے آنسو نیچے گر رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ میں سوچا، او خداوند کی تعریف ہو، اس نے کام کیا۔ جب میں نے عورت کی آنکھوں کی جانب دیکھا تو میں اس کی آنکھوں کو بھی بھیگا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے ان کے ہاتھ ملائے اور کہا، جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی شخص یا حالات نہ توڑنے پائیں۔ میں کھڑا ہوا اور کہا، میں جا رہا ہوں۔ دونوں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئے، اور جیسے ہی میں انہیں چھوڑ کر جانے لگا، انہوں نے مجھ سے کہا، خدا حافظ پاسٹر صاحب۔ میں نے کہا، خداوند کی تعریف ہو، وہ کام کرتا ہے۔ اگلے اتوار دونوں کوائر میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ گایا۔ عبادت کے بعد میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملائے اور عورت سے پوچھا کیا ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، لیکن جب آپ نے وہ الفاظ کہے اور حکم دیا تو ہم نے اپنے دل میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ یہ ایسے تھا جیسے کہ کوئی دیوار تباہ کر دی گئی ہے اور ہم ملا دیے گئے تھے۔ اچانک ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ شاید ہم دونوں کو ایک ہی وقت میں ایک بار اور کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے جانے کے بعد ہم نے تمام رات اپنا سارا سامان کھولنے میں صرف کر دی۔ اب جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم اس قدر کیوں جھگڑتے تھے اور ہم کیوں علیحدہ ہونے کو جا رہے تھے۔ اب ہم ایک دوسرے کو پہلے سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ روح القدس کو آپ کے اور میرے دونوں کے کلام کی ضرورت ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ بحث کرتا یا اگر میں صرف خاموشی کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتا تو پھر میں موقع کھو دیتا۔ میں نے کلام دیا اور کلام کہا اور اس نے تخلیق کیا۔ روح القدس کو آپ کے واضح کلام کی ضرورت ہے، ایمان کے کلام کی ضرورت ہے۔ مسیح خداوند نے کلام کو تبدیل کرنے اور تخلیق کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مسیح خداوند کے شاگردوں نے کلام کو تبدیل کرنے اور تخلیق کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بدقسمتی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسیح خداوند کی کلیسیا ایک دائمی بھکاری بن گئی ہے جو مانگتی اور مانگتی ہی رہتی ہے اور حکم کے الفاظ بولنے سے گھبراتی ہے۔ ہمیں حکم کا کلام کہنے کے کھوئے ہوئے فن کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسیح خداوند کی حضوری کا احساس دلانے کے لیے کہے ہوئے کلام کی قدرت کو استعمال کرنے کی ایک تیسری وجہ بھی ہے۔ اس کے وسیلے سے آپ مسیح خداوند کی حضوری کو تخلیق کرتے ہیں تو آپ پاتے ہیں، کیونکہ راست بازی پر ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کے اقرار کے وسیلے سے ہی ہے کہ انسان نجات کو تھام سکتا ہے، جو کہ صرف مسیح خداوند کے وسیلے سے ہی ملتی ہے۔ اب کہیں بھی اس عبارت میں یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی کو آسمان پر اوپر بھیجا جائے یا مسیح خداوند کو نیچے زمین پر لایا جائے تاکہ نجات دے۔ جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کلام، جس کے نتیجے میں نجات مل سکتی ہے، نزدیک ہے، کیونکہ وہ الفاظ تو آپ کے دل میں ہیں اور آپ کے منہ میں ہیں۔ اس عمل میں مسیح خداوند کہاں ہے، اس کا پتہ کیا ہے؟ نہ اوپر آسمان پر اور نہ نیچے زمین پر، मसीह खुदामंद अपने कलाम में है। वो अल्फाज कहाँ हैं जो आपकी निजात का नतीजा हो सकते हैं? वो अल्फाज आपके मुंह पर हैं और आपके दिल में हैं, जो आप कहेंगे। मसीह खुदामंद वो करने का पाबंद है। जैसा कि आप मसीह खुदामंद की कुदरत को अपने कहे हुए कलाम के जरिए खारिज कर सकते हैं, आप मसीह खुदावंद की हुजूरी को भी तख्लीक कर सकते हैं। अगर आप ईमान का कलाम वाज़े तौर पर नहीं कहते हैं, मसीह खुदावंद कभी भी जाहिर नहीं हो सकता है। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर भी बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर भी खोलोगे वो आसमान पर भी खोल दिया जाएगा। आप ये जिम्मेदारी लें कि मसीह खुदावंद की हुजूरी को लिए फिरें। जब भी मेरा अपनी कलीसिया के 100 नायब पास्टरों के साथ इजलास होता है, मैं उन्हें एक सख्त हुक्म देता हूँ। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, मसीह खुदावंद की हुजूरी को तख्लीक करें। आपके लिए लाजिम है कि मसीह खुदावंद को जाहिर करें और ख़ास ज़रूरियात को पूरा करें। मैं आपको चंद मिसालें देना चाहता हूँ। हमारे गिर्द व नवा में बहुत से ऐसे चर्च हैं जो कि मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखते हैं। एक खास प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में खादिम सिर्फ नई पैदाइश के तजर्बे के बारे में कलाम देता है। वो सिर्फ नजात के तजर्बे के बारे में ही जोर देकर कलाम देता है, लिहाजा वो सिर्फ मसीह खुदावंद की हुजूरी ही को तख्लीक कर रहा है जो कि लोगों को नई पैदाइश का तजर्बा दे सकती है। लोग उसके चर्च में आते हैं और वो नजात पाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। होली नए चर्च जो कि हमारे साथ ही है, दिन रात तकदीस के बारे में कलाम देता रहता है। मुकद्दस बनो, मुकद्दस बनो, वो बार बार नसीहत करते हैं। बहुत से लोग आते हैं और तकदीस की हुजूरी को हासिल करते हैं। खादिम वहाँ पर सिर्फ तकदीस देने वाले मसीह खुदावंद की हुजूरी को तख्लीक कर रहा है, लेकिन मैं अपने चर्च में निजात देने वाले मसीह, तकदीस देने वाले मसीह, बपतिस्मा देने वाले निजात दहिंदा, बरकत देने वाले खुदा के बेटे और शफा देने वाले मसीह खुदावंद के बारे में तालीम देता हूँ। और अपने चर्च में हम इन तमाम पहलुओं का मुजाहिरा देखते हैं। मैं मसीह खुदावंद की तमाम और मुकम्मल हुजूरी तख्लीक करने की कोशिश करता हूँ। आपका काम, आप अपने मुंह से मसीह खुदावंद की हुजूरी को तख्लीक करते हैं। अगर आप नजात के बारे में कहेंगे तो नजात देने वाला मसीह जाहिर होगा। अगर आप इलाही शफा के बारे में कहेंगे तो फिर शफा देने वाला मसीह आपकी कलीसिया में होगा। अगर आप मौजजात करने वाले मसीह के बारे में कहेंगे तो फिर मौजजात करने वाले खुदा की हुजूरी जाहिर होगी। वो आपके होंठों और अल्फाज का पाबंद है, वो आप पर इन्हसार कर रहा है। और अगर आप इबलीस के खौफ के बायस वाज़े तौर पर नहीं बोलते हैं, फिर मसीह खुदावंद कैसे इस नस्ल के लिए अपनी कुदरत का इजहार करेगा? लिहाजा दलेरी से कहें, बहुत से लोग अपने घरों में बड़ी बड़ी मुश्किलात रखते हैं क्योंकि वो ख़ानदानी मजबा नहीं रखते। अगर बाप एक ख़ानदानी मजबा कायम करे और वाज़े तौर पर ख़ानदान और घर में मसीह खुदावंद की हुजूरी के बारे में कहे, तो वो मसीह खुदावंद की हुजूरी को तख्लीक कर सकता है और मसीह खुदावंद इस ख़ानदान की तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है। लेकिन चूंकि बहुत से ख़ानदानी मजबे को नज़रअंदाज करते हैं, वो मसीह खुदावंद की वाज़े हुजूरी के बारे में कहने को नज़रअंदाज करते हैं, सो उनके बच्चे खुदा की तमाम बरकात पाए बगैर रह जाते हैं। आपको कोई ख़ास रूहानी नेमत हासिल करने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि रूहानी नेमतें रूहुल कुद्स में सुकूनत करती हैं। आप खुद कोई रूहानी नेमत नहीं रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मेरे पास शफा की नेमत होती तो फिर बिला इम्तियाज जो कोई भी मेरे पास शफा के लिए आता, मैं उसे शफा दे सकता। अगर मेरे पास कीमत होती तो मैं हर एक को शफा दे देता, और इस बात में मैं हकीकी तौर पर इम्तियाज नहीं कर सकता था। रूहुल कुद्स एक ज़रूरत को देखती है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी के वसीले से बहते हुए इस नेमत को अमल करने देती है। ये याद रखना अहम है कि तमाम नेमतें रूहुल कुद्स में सुकूनत करती हैं, क्योंकि ये रूहुल कुद्स ही है जो कि आपकी कलीसिया में और आप में सुकूनत करता है। उसके वसीले से आप हर किस्म की खिदमत रख सकते हैं। उस्ताद की खिदमत, खुशखबरी फैलाने की खिदमत, مشنری کی خدمت، پاسبانی کی خدمت اور الہی شفا کی خدمت۔ آپ خدا کا ذریعہ ہیں جس سے روح القدس اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، لہذا آپ کسی بھی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے پریشان مت ہوں، پر اعتماد ہوں، دلیری کی نعمت حاصل کریں، پھر کلام کہیں، کلام واضح طور پر کہیں اور مسیح خداوند کی ایک مخصوص حضوری کو تخلیق کریں۔ مسیح خداوند کی اس مخصوص حضوری کو اپنی کلیسیا میں پیش کریں اور آپ مخصوص نتائج حاصل کریں گے۔ ایک باپ اپنے کہے ہوئے کلام کے وسیلے سے مسیح خداوند کی حضوری کو تخلیق کر سکتا ہے، اور مسیح خداوند اس کے خاندان کی تمام مشکلات کی نگرانی کرے گا۔ لہٰذا میں اسی طرح اپنے چرچ میں کلام سنانے کے لیے آتا ہوں اور مخصوص نتائج حاصل کرنے کے لیے مخصوص بیج بوتا ہوں۔ میں امریکن عبادتوں میں ایک بڑی خامی دیکھتا ہوں۔ امریکی پاسٹر اپنی کلیسیا کو بہت اعلیٰ کلام سناتے ہیں، لیکن اس کے بعد لوگوں کو فوراً ہی رخصت کر دیا جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ انہیں وقت نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی زندگی میں ان پیغامات کے مطابق پھل لائیں۔ وہ کہے ہوئے تمام کلام کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، لیکن دعا کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تاکہ وہ کلام اس قدر ان میں پیوست ہو جائے کہ وہ ان کا ایک حصہ بن جائے۔ امریکہ میں عبادات بہت ہی جلد برخاست کر دی جاتی ہیں۔ کلیسیا کو وقت دیں، ابتدائیے اور تفریحات کم کریں، کلام دیں اور لوگوں کو اکٹھے دعا کرنے کے لیے زیادہ وقت دیں، ان کہے ہوئے الفاظ کو ہضم ہونے دیں۔ اگر ایسا کیا جائے تو آپ ان پاسٹر صاحبان کی خدمتوں میں اور زیادہ نتائج دیکھیں گے۔ آخرکار آپ کا کلام آپ کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کا بولنے کا مرکز تمام نسوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ اسی لیے غیر زبان میں بولنا روح القدس کے بپتسمے کا پہلا نشان ہے۔ جب روح القدس بولنے کے مرکز پر قابو پا لیتی ہے، وہ جسم کی تمام نسوں پر قابو پا لیتی ہے اور تمام جسم کو قابو میں رکھتی ہے۔ لہذا جب ہم غیر زبانوں میں بولتے ہیں، ہم روح القدس سے معمور ہو جاتے ہیں۔ اپنے تمام جسم اور تمام زندگی کو قابو میں کرنے کے لیے کلام کہیں، روح القدس کو کلام کرنے دیں تاکہ وہ اس میں سے کچھ تخلیق کر سکے۔ پھر اپنے کہے ہوئے کلام کے ذریعے مسیح خداوند کی حضوری کو تخلیق کریں اور اسے پیش کریں۔ کلام پیش کریں، کہے ہوئے کلام میں قدرت ہے، اور جب آپ اس کلام کو پیش کرتے ہیں، یہ وہ کلام ہے، نہ کہ آپ جو کہ معجزات کرتا ہے۔ خدا آپ کو اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ آپ مکمل طور پر پاک، کیونکہ جب تک ایک مسیحی زندہ ہے وہ اپنے جسم سے جان فشانی کرتا رہے گا۔ خدا آپ کو استعمال کرتا ہے کیونکہ آپ ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا بہنوں اور بھائیوں، آئیں ہم کہتے ہوئے کلام کو استعمال کریں اپنی شخصی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ مسیح خداوند کی حضوری کو تخلیق اور پیش کریں۔ یاد رکھیں کہ مسیح خداوند اپنی حضوری کو پیش کرنے کے لیے آپ کے کہے ہوئے کلام پر انحصار کرتا ہے۔ آپ اس مسیح کے ساتھ کیا کریں گے جو آپ کی زبان پر سوار ہے؟ کیا آپ اسے دوسروں کی برکت کے لیے پیش کریں گے، یا کیا آپ اسے خاموش زبان اور بند منہ سے قید کر دیں گے؟ جیسے آپ فیصلہ دیں، خدا آپ کو برکت دیں۔